नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, स्वागत आपका।
थैंक यू धर्मेंद्र, सुनने वालों को भी नमस्कार।
आज बैडमिंटन से एक बार फिर से अच्छी खबर आई है। कल हमने जहां बात की थी कि साइफन ओपन में तानिया हेमंत ने खिताब जीत लिया था, आज बैडमिंटन के कोर्ट से एक और अच्छी खबर, देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीत लिया है।
जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है। देविका सिहाग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इंडियन टीम की एक मेंबर बन चुकी है। एक लिहाज से ये एक और धर्मेंद्र बहुत अच्छी बात है कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इसी साल इंडिया में गुवाहाटी में होने वाली है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में, जो टीम चैंपियनशिप भी होगी और इंडिविजुअल चैंपियनशिप भी। तो ये जैसे तानिया हेमंत ने अच्छा परफॉर्म किया, टूर्नामेंट जीता, भले ही वो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट है या फिर आज देविका सिहाग ने टाइटल जीता, बट इंडियन बैडमिंटन के लिए जो एक पौध उभर करके सामने आ रही है उसके लिहाज से एक बहुत ही हार्टनिंग खबर है।
शिवेंद्र, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया में NSW बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह उपविजेता रही। डूरंट को फुटबॉल टूर्नामेंट में डायमंड हार्बर FC ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल जारी। और अमेरिका के सेंट लुई में सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता कल से डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा रखेंगे भारत की चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इपोह में आज खेले गए फाइनल में उन्होंने अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। देविका जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा रही थी। और हम जैसी चर्चा कर रहे थे कि भारत में बैडमिंटन की जो पौध है वो बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन शिवेंद्र एक सवाल तो उठता है कि हाल के कुछ वर्षों में, ये पिछले साल से अगर हम बात करें, उस तरह के परिणाम जो बड़े टूर्नामेंट्स में आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं।
जी हाँ, ये बात तो सही है कि देखिए, ये ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन पीरियड है अगर विमेन बैडमिंटन या मैन बैडमिंटन की बात करें, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, BWF रैंकिंग जो है टॉप 100 में महिला वर्ग में 16 खिलाड़ी हैं, 100 में से 16 भारतीय हैं।
जी,
टॉप 10 में कोई भी नहीं है। टॉप 15, टॉप 16, PV सिंधु भारत की अभी भी हाईएस्ट रैंक प्लेयर हैं, और वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्ग में 14 भारतीय खिलाड़ी हैं टॉप 100 में, जहां पर लक्ष्य सेन हाईएस्ट रैंक प्लेयर हैं। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि 2025 में केवल एक सिंगल्स टाइटल BWF सीरीज में आया है। आयुष शेट्टी ने US ओपन जीता था, सुपर 300 था वो, और सुपर 300, 500, 700, 750, 1000 इस तरीके की सीरीज के टूर्नामेंट होते हैं। तो आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, जहां पर PV सिंधु 5 बार की मेडलिस्ट हैं, एक बार उन्होंने टाइटल भी जीता है, और HS प्रणॉय, लक्ष्य सेन, ये सभी खिताब जीत चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब आप रैंकिंग में नीचे चले जाते हैं तो आपको इनिशियल राउंड्स में ही बहुत अपने से टॉप सीडेड प्लेयर से भी खेलना पड़ सकता है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वही होने वाला है। कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस ऑफ देविका सिहाग, बहुत कमेंडेबल परफॉर्मेंस है क्योंकि उनका पहला BWF इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल है। और उससे भी बड़ी बात धर्मेंद्र ये है कि उन्होंने तस्नीम मीर, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, उनको सेमीफाइनल में हराया, जो फॉर्मर जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 है और इस टूर्नामेंट में चौथी वरीयता प्राप्त थी और इनसे ऊंची वरीयता की थी। ईशा रानी बरुआ जो BWF रैंकिंग में 80वें पायदान पर हैं, देविका सिहाग 100वें नंबर पर हैं। तो ये जाहिर करता है कि देविका का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छी बात है कि ऊपर जा रहा है। और अगर आप कुछ प्लेयर्स को जिनका हम नाम ले सकते हैं, तानिया हेमंत का आपने नाम लिया, तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, ये ऐसे खिलाड़ी, उन्नति हुडा जिन्होंने अभी कितना बढ़िया परफॉर्म किया, PV सिंधु को पराजित किया था, तो इंडियन बैडमिंटन का कल बड़ा प्रॉमिसिंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड, वी हैव टू कीप फेथ ऑन आवर प्लेयर्स, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। वो दिन दूर नहीं है जब आप टॉप 10 में किसी पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में भारतीय खिलाड़ी को देखेंगे। एक जल्दी से मेंशन करूंगा, ये जो मलेशिया इंटरनेशनल ओपन हुआ है यहां पर मिथुन मंजुनाथ भारत के खिलाड़ी वो सेमीफाइनल में पहुंचे और टॉप सीडेड थे मनराज सिंह, वो क्वार्टर फाइनल हार गए थे। तो पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हमको टॉप 10 की बात करते हैं तो फिर साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत, ये रोज रोज नहीं आते प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स थोड़ा समय लगता है उनको आने में, और सभी खिलाड़ियों में पोटेंशियल है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ओनली थिंग इज वी हैव टू कीप फेथ ऑन आवर प्लेयर्स।
जी, और रैकेट गेम से ही एक और अच्छी खबर है, ऑस्ट्रेलिया में NSW बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह उपविजेता रही। फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत को दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की हबीबा हानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। किसी वैश्विक टूर्नामेंट का पहला फाइनल खेल रही 17 वर्षीय अनाहत ने पहला गेम 11-9 से जीत लिया, लेकिन हानी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम 11-5 और 11-8 से जीत लिए। चौथे गेम में मिस्र की खिलाड़ी 10-4 से आ गई थी, तभी चोटिल अनाहत ने मैच से हटने का फैसला किया। लेकिन 17 साल की इस खिलाड़ी का भी प्रदर्शन, जो हम कह रहे थे बैडमिंटन की बात, वही स्क्वाश में भी बात लागू होती है।
बिल्कुल, अनहत सिंह तो कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है, दिल्ली के रहने वाली है। एक और खास बात यह है कि खून में है उनके स्पोर्ट्स, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही प्रोफेशनली किसी और फील्ड में थे लेकिन हॉकी खेलते थे, उनके अंकल टेनिस खेलते थे, और इनकी जो सिस्टर हैं उनको देखते हुए जाते देख करके स्क्वाश में इनका इंटरेस्ट आया। और अनहत अभी धीरे धीरे ग्रेजुएट कर रही है सीनियर वर्ग की ओर, यंगेस्ट एशियन चैंपियन है वो भारत की, और एशियाड में जब गई थी बहुत ही कम उम्र की खिलाड़ी थी, और बहुत छुटपन से ही इन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। जोशना चिनप्पा की याद दिलाती है, दीपिका पल्लिकल की याद दिलाती है। तो जैसा हम बैडमिंटन में बात कर रहे थे कुछ कुछ सिनेरियो वैसा ही यहां स्क्वाश में लग रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेली थी अभी ये कुछ दिन पहले, और अभय सिंह भारत की ओर से गए थे, एक और खिलाड़ी, उनके अलावा कई और खिलाड़ी भी पुरुष वर्ग में थे। सौरभ घोषाल इनको कोच कर रहे हैं, जो खुद मल्टीपल मेडलिस्ट हैं एशियन लेवल पर, और ऑफ कोर्स प्रॉमिसिंग है बहुत, भविष्य बहुत उज्जवल है उनका।
और अब खबर फुटबॉल की, डायमंड हार्बर FC 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जमशेदपुर में आज खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में उसने जमशेदपुर FC को 2-0 से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
अपने घरेलू समर्थकों के बीच जमशेदपुर FC ने दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन लक्ष्य से बार बार भटकना टीम को भारी पड़ गया। टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस क्वार्टर फाइनल में रुआटकीमा के तीसरे मिनट में किए गए गोल से डायमंड हार्बर FC ने न सिर्फ शुरुआती बढ़त बना ली बल्कि मेजबान टीम को दबाव में भी ला दिया। इस गोल को उतारने के लिए जमशेदपुर FC ने पूरी जद्दोजहद की, लेकिन सटीक आक्रमण के अभाव में टीम गोल पोस्ट के पास जाकर भी भटकती दिखी। सच कहा जाए तो टीम को अपने पुराने कोच खालिद जमील की कमी खूब खली। खालिद जमील अब भारत की राष्ट्रीय टीम के कोच बन गए हैं। दूसरी तरफ डायमंड हार्बर FC के आक्रमण में सटीकता थी। इसी का परिणाम था कि हाफ टाइम से कुछ समय पहले 41वें मिनट में रुआटकीमा ने एक और गोल कर अपनी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पिछले 23 मैचों से नाबाद रहे डायमंड हार्बर को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सिर्फ अपनी बढ़त को बनाए रखना था। टीम की रक्षा पंक्ति ने इस काम को बखूबी किया और जमशेदपुर FC के हर आक्रमण को बेअसर कर दिया। जब रेफरी ने अंतिम विसल बजाई तो पूरी टीम का जोश लाजवाब था। दूसरी तरफ ग्रुप स्टेज में अविजित रही जमशेदपुर FC के खिलाड़ियों के चेहरों पर छाई निराशा इस बात का संकेत थी कि लक्ष्य को चूकने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन सच यही है कि इस मुकाबले में बेहतर फुटबॉल खेलने वाली टीम विजेता बनी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
और टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इस समय कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच चल रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक ईस्ट बंगाल 2-0 से आगे है, और इस टूर्नामेंट में तो कमाल ही हो रहा है। डायमंड हार्बर की टीम पहली बार टूर्नामेंट में उतरी और सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और ईस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, इस टीम को एक डूबता हुआ जहाज समझा जा रहा था
जी। काफी लंबे समय के बाद हो रहा है कि ईस्ट बंगाल रिसर्जेंस की ओर अग्रसर है, और ये कोलकाता डार्बी है, हम ना भूलें, ये एक सबसे अनफॉरगेटेबल इवेंट होता है कोलकाता फुटबॉल का। डायमंड हार्बर पहली बार खेल रहे थे, तो डायमंड हार्बर, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, कोलकाता भारतीय फुटबॉल का गढ़ रहा है। लेकिन धर्मेंद्र, अभी अभी खबर आ रही है मंटा कोच ने 2 गोल किए थे ईस्ट बंगाल की ओर से, लेकिन एक गोल थापा ने कर दिया मोहन बगान की ओर से, तो मामला अभी खत्म हुआ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है
जी। और फुटबॉल से एक और खबर है, भूटान के थिम्पू में 20 से 31 अगस्त तक होने वाली सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए आज भारत की अंडर 17 महिला टीम की घोषणा की गई। मुख्य कोच जोकिम अलेक्जेंडरसन ने 23 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है और भारतीय टीम किर्गिज गणराज्य में होने वाले एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप क्वालिफायर से पहले सैफ चैंपियनशिप में खेलेगी। अब चलते हैं दूसरे खेल की तरफ और शतरंज की बात करते हैं। अमेरिका के सेंट लुई में सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। विश्व चैंपियन डी गुकेश इस टूर्नामेंट के जरिए संक्षिप्त अंतराल के बाद क्लासिकल शतरंज में वापसी करेंगे। आर प्रज्ञानंदा भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। एक रिपोर्ट।
ग्रैंड शतरंज टूर के पांचवें चरण की इस प्रतियोगिता में गुकेश के साथ साथ प्रज्ञानंदा पोडियम स्थान हासिल कर अपनी रैंकिंग मजबूत करना चाहेंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। कार्लसन के नहीं खेलने के बावजूद इस प्रतियोगिता में कई शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अमेरिका के फेबियानो कारुआना, फ्रांस के अलीरेजा फेरोजा और अच्छी फॉर्म में चल रहे लेवोन अरुनियन भारत के दोनों खिलाड़ियों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। गुकेश की रैपिड शतरंज में वर्तमान फॉर्म को देखते हुए दावेदारी मजबूत नहीं मानी जा रही, लेकिन इस भारतीय ग्रैंड मास्टर का क्लासिकल शतरंज में शानदार रिकॉर्ड रहा है। इस बीच प्रज्ञानंदा ने अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करके अपनी स्थिति पहले ही मजबूत कर ली है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में विश्व खिताब के लिए गुकेश की प्रतिद्वंदी का फैसला होगा। प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर की तालिका में वर्तमान में गुकेश से आगे हैं, लेकिन निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस प्रतियोगिता में उनका सामना अनुभवी प्रतिद्वंदियों से होगा। ये प्रतियोगिता 10 खिलाड़ियों के बीच 9 राउंड में खेली जाएगी, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 3,50,000 अमरीकी डॉलर है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
पटना में पुरुषों की 12वीं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर प्रतीक चिन्ह और ट्रॉफी का अनावरण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार पहली बार एशिया कप हॉकी की मेजबानी करने जा रहा है, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 29 अगस्त से एशिया की बेहतरीन हॉकी टीमें अपनी बादशाहत कायम करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। 7 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की ट्रॉफी गौरव यात्रा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में एशिया कप हॉकी की मशाल राज्य के हर जिले से होकर गुजरेगी। एशिया कप हॉकी के शुभंकर का नाम चांद रखा गया है, जो साहस, स्फूर्ति और कौशल से परिपूर्ण भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का प्रतीक है। इसका लाल लबादा शक्ति और उत्साह को दर्शाता है, जबकि जादूगर की टोपी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की असाधारण प्रतिभा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चांद का नाम मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है, जिन्होंने चांदनी रातों में अभ्यास कर हॉकी में इतिहास रचा। टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका विजेता हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगा। दक्षिण कोरिया ने अब तक सर्वाधिक 5 बार ये खिताब जीता है, जबकि भारत और पाकिस्तान 3-3 बार चैंपियन रह चुके हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय के साथ मैं विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
और बात क्रिकेट की, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अगस्त के अंत में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला और उसके बाद होने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम की आज लाहौर में घोषणा की गई। टीम में अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गई है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप शिवेंद्र?
देखिए, बाबर आजम और जो भी चेंजेस पाकिस्तान की टीम में हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड उतने नहीं है। थोड़ा बहुत वहां पर क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ऑफकोर्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एशिया कप के लिए उनको टीम में जगह नहीं मिली है। शायद ये उनके लिए एक अवेकनिंग कॉल भी है कि अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस बल्ले से नहीं देंगे तो न केवल जैसे वो कप्तान हुआ करते थे, बल्कि टीम में भी उनकी जगह पर सशंकित चीजें हो सकती हैं, और वैसे ही हो रहा है एशिया कप के लिए।
जी, और ब्रिस्बेन में एलिसा हेली के नाबाद 137 रन की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने आज भारत ए के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने शुक्रवार को दूसरे मैच में 2 विकेट से जीत हासिल कर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली थी। भारतीय टीम ने पहले मैच में 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। कार्लोस अल्गराज सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में उन्होंने चोटिल अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-4, 6-3 से हराया। फाइनल में उनका सामना यानिक सिनर से होगा, ये भी काफी कांटे का मुकाबला।
जी हाँ, ये ड्रीम फाइनल हो चुका है। एक तरफ अल्कराज हैं, दूसरी तरफ यानिक सिनर होते हैं। आप कोई ग्रैंड स्लैम ले लें या मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट ले लें, और ये फाइनल भी जोरदार होने वाला है।
और शिवेंद्र, अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो स्टूडियो में आने के लिए हमसे इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू धर्मेंद्र।
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।